हमने लास्ट क्लासों में छड़ाला की तीसरी ढाल सम्यक के स्वरूप के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। सम्यक के आठ अंग की पूर्व भूमिका हमने लास्ट क्लास में ग्यारहवा छंद पूरा किया था, उसके बाद बारहवा और तेरहवा आधा हमने पढ़ा था। एक बार जो बारहवा छंद है जिसका हमने सामान्य से स्वरूप देखा था उसको देखेंगे। एक बार 11 और 12 अपन वापस से बोलते हैं। पहले 11 नंबर का छंद, उसके बाद जिसके अंदर सम्यक के 25 दोषों के वर्णन है, उसके बाद जो हमारी मूल विषय वस्तु है सम्यक की, वो 12वें छंद की हम करेंगे। ठीक है, चलिए। शंका नार व्रत भव सुख वांछा मुनि तन मलिन न देखे धाके धर्म बढ़ावे काम पर को सुधरावे धर्मी सो गो बस प्रीति सम कर जिन धर्म दिपावे हमने 11वें छंद में जो सम्यक के 25 दोष थे उसका सामान्य से स्वरूप देखा था। फिर उसके बाद में 12वां जो छंद चालू किया उसमें सम्यक के 8 अंग और उसके ही विपरीत सम्यक के 8 दोष, इनका हमने चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें प्रारंभिक जो 4 अंग हैं उन 4 अंगों की हमने सामान्य से चर्चा देखी थी। आज अंतिम 4 अंगों को हम देखेंगे। सबसे पहला आप इसे एक बार नाम बोलेंगे, सम्यक के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। और सम्यक के दोष कितने हैं? 25 दोष। सम्यक के दोष कितने हैं? 25। और सम्यक के 8 अंग हैं। सम्यक के अंग कितने हैं? 8 हैं। तो इस 8 अंग में सबसे पहला अंग है निशंकित। सबसे पहला अंग है निशंकित। दूसरा है निकांकित। बुक के अंदर पेज नंबर 80 पे जहाँ 1, 2, 3, 4 लिखा है सबके एंड में उनका नाम लिखा है। दूसरा है निकांकित। तीसरा है निर्वचिकित्सा। तीसरा है निर्वचिकित्सा। चौथा है अमूल दृष्टि। अमूल दृष्टि। पांचवा है उपगूहन। पांचवा है उपगूहन। छठा है स्थितिकरण। सातवां है वात्सल्य। और आठवां है प्रभाव। बराबर है। पहला है निशंकित, दूसरा निकांक्षित, तीसरा निर्वचिकित्सा, चौथा अमूर्त दृष्टि, पांचवा उपगूहन, छठा स्थितिकरण, सातवां वात्सल्य और आठवां प्रभाव। इस प्रकार सम्यक के 8 अंग हैं। बराबर है। तो सबसे पहला है निशंकित अंग जो हमने देखा था। क्या लिखा है 12वें छंद का सबसे ऊपर लिखा है सम्यक न 8 अंगों अर्थात गुणों अने शंकादि 8 दोषों लक्षण। 12वें श्लोक का हेडिंग। फिर उसमें नीचे है जिन वचन में शंका न धार, मतलब जिसको जिन वचनों में जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए वचनों में जिसको शंका नहीं होती है वो सबसे पहला है निशंकित अंग। बराबर है। निशंकित अंग की आपने कहानी अगर सुनी हो सबने, अंजन चोर का नाम तो सबने सुना ही है। तो अंजन चोर ने क्या किया था, मतलब कुछ चोरी करके वो भाग रहा था। भागते भागते एक वो गार्डन के अंदर पहुंचा। उस उपवन में उसने क्या देखा कि एक सेठ कोई विद्या साध रहा है और वो क्या कर रहा है, एक ऊपर एक मटका सा या कुछ भी बर्तन लटका हुआ है डोरी के बाहर से और नीचे त्रिशूल या तलवार कुछ भी नीचे गड़ी हुई है और वो उस बर्तन के ऊपर बैठा हुआ है और वो बर्तन एक धागे से बंधा हुआ है और क्या करना है, जैसे वो जितने भी धागे से बंधा था 6-7 जितने धागे से कि मंत्र बोलते जाना है और एक एक धागा काटता जाना है। बराबर है। वो मंत्र का प्रभाव था। लेकिन वो सेठ वहाँ बैठा तो था, वो मंत्र पढ़ तो रहा था, लेकिन वो धागा काटने में उसको क्या लग रहा था, अंदर डर लग रहा था कि अगर ये मंत्र सिद्ध नहीं हुआ तो मैं कहाँ गिरूंगा, नीचे जहाँ पे वो तलवार और है तो मैं गिरूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसको वहाँ क्या थी, शंका थी, उसको विश्वास तो था मेरे गुरु ने ये मंत्र दिया है जरूर अच्छा है कुछ होने वाला है, लेकिन उसके मन में क्या थी, शंका थी। फिर अंजन चोर आया, उसने उससे पूछा कि सेठ जी क्या कर रहे हो, उसने बताया कि ऐसा ऐसा मंत्र है, ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो उसको मंत्र भी याद नहीं हुआ, लेकिन उसको क्या था कि सेठ के गुरु ने मंत्र दिया तो उसके ऊपर उसको दृढ़ श्रद्धा थी, तो उसको उसमें शंका नहीं रही। उसने बैठ के नमोकार मंत्र का मंत्र था, लेकिन उसने वो तो बोला नहीं क्योंकि तिरंजी तो उसको याद होगा नहीं, चोर था। उसने क्या बोला, आड़म ताड़म कुछ नहीं जानम सेठ वचनम प्रमाणम, कि सेठ ने जो वचन बोले हैं वही प्रमाण है मेरे लिए। तो एक एक करके सारे धागे काट दिए और वो नीचे गिरने की वजह आकाश जामनी विद्या उसको सिद्ध हो गई। तो ये है निसंकित, मतलब बिल्कुल भी शंका नहीं होना। जैसे मैंने पिछली बार बताया था क्लास में कि जैन दर्शन के कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जिन पे हमारा तर्क नहीं लगता है, जैसे केवल ज्ञानी का ज्ञान, सर्व पूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञानी का ज्ञान पे। तो ऐसे सब सिद्धांतों के ऊपर हमें अपना जो श्रद्धा है कि हमारे जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, जिनवाणी में जो लिखा है, वो परम सत्य है। ऐसा हो सकता है कि मैं उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ या मेरे श्रवण की कमी के कारण मैं उसको जान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अपने सोच के कारण जिनवाणी में गलती निकालना कि यहाँ पे गलत लिखा है या जिनवाणी को कुछ गलत करना या ऐसा मानना, वो हमारा दोष है क्योंकि हमारे श्रवण की कमी है, हमारा श्रवण ज्ञान कम है। टोडरमल जी ने लिखा है न कि व्यक्ति क्या करता है कि शास्त्र का गुरुओं के अनुसार तो अर्थ नहीं करता, अपने अनुसार अर्थ करता है तो वो शास्त्र इस व्यक्ति को शस्त्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पर क्योंकि जिनवाणी में कई जगह ऐसा लिखा है कि कुछ भी करना नहीं है, बस अपनी आत्मा का ध्यान करना है, बाकी कुछ भी सब परे सब हटा दो, सब कुछ भी चीज नहीं है, पूजा करना दर्शन करना सब ये है, इतनी ऊपर की बात भी लिखी जिनवाणी में कि दर्शन भी नहीं करना, पूजा भी कुछ भी नहीं करना, खाली अपने शुद्ध भाव का ध्यान रखना। लेकिन जो जी मात्र उस वर्ड को ही समझ के और उसका भाव नहीं पकड़े, उस दशा तक नहीं आया और खाली उस वर्ड को पकड़े और स्वच्छंदीप हो जाए, तो वहाँ शास्त्र का दोष नहीं है, वहाँ उस समझने वाले का दोष है। सर जिनवाणी में तो भिन्न भिन्न जगह पे अलग अलग प्रकार के कथन मिलेंगे, लेकिन उन कथनों को हम अगर अपने अनुसार से लगा लेंगे कि ये ऐसे मुझे फिट बैठता है, ये ऐसे मुझे फिट बैठता है, तो वास्तविक हमारा हिस्टारिक नहीं होगा। इसके लिए जिन वचन में कभी भी शंका धारण नहीं करना, वो सबसे पहला है निशंकित अंग, दूसरा है निकांक्षित अंग, दूसरा है निकांक्षित, जिसके अंदर कथा आती है अनंतमति की, अनंतमति करके एक कथा आती है पुराणों के अंदर कि उन्होंने जिनेन्द्र भगवान के मतलब दर्शन वंदना आदि से निकांक्षित मतलब नी प्लस कांचा, मतलब जिस कार्य से हमें कोई इच्छा की इच्छा हमें उसमें नहीं हो, मतलब कोई भी कांक्षा हमें उससे नहीं हो, ऐसी जैसे इसमें लिखा है ना भावार्थ में, देखिए सामने वाले पेज पे भावार्थ में सेकंड नंबर धर्म सेवन करी, पेज नंबर 80, धर्म सेवन करी तेना बदला मा संसार मा सुखोनी इच्छा ना करवी तेने निकांक्षित अंग कहवाए छे, बराबर ना, कि संसार जो धर्म के सेवन करने से संसार आदि की लौकिक इच्छा नहीं करना, इसी को नाम वास्तव में क्या है, निकांक्षित अंग है, कि बाहर अपने कार्य से मतलब अपने जिन धर्म के कार्य से या अपने आत्म कार्य से बाहर के लौकिक के कुछ भी प्रयोजन को नहीं रखना, उसका नाम है निकांक्षित। उसके बाद में तीसरा निर्वचिकित्सा, निर्वचिकित्सा अंग में कहानी आती है उदयन राजा की, एक राजा थे उदयन राजा, कथा ऐसी है कि इंद्र की सभा चल रही थी और उस सभा में इंद्र ने उन राजा की बहुत प्रशंसा की देवताओं से कि उदयन राजा एक ऐसे राजा है धरती पे कि वो निर्वचिकित्सा अंग में बहुत प्रसिद्ध है, वो कभी किसी के भी शरीर को देखकर मतलब उनको भिन्न नहीं आती है, किसी हमेशा वो साधर्मी की सेवा करते है। तो एक देवता ने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि वो धरती पर आकर मुनिराज का रूप धारण किया, और मुनिराज कैसे जिनके पूरे शरीर पे कुष्ठ रोग हुआ है, कुष्ठ रोग जिसे उनके पूरे शरीर पे कुष्ठ हुआ है, हर पूरे शरीर में मवाद निकल रही है, पंची मतलब वो जो कीड़े होते हैं वो कीड़े घूम रहे हैं, मतलब जिसके शरीर से ऐसी दुर्गंध आ रही है, तो वो जब मुनिराज आए तो बाकी सारे नगरजन कैसे नाक बंद करके दूर हटने लगे, दूर जाने लगे, क्योंकि उनको घिन आने लगी। लेकिन वो उज्जैन राजा और उनकी रानी वो बिल्कुल भक्ति भाव से मुनिराज को पढ़ाने लगे कि हे स्वामी आइए आइए हमारे यहाँ भोजन करिए। मुनिराज उनके यहाँ प्रवेश करते हैं, जैसे ही भोजन करने के लिए कराने के लिए वो अपना कुछ आगे करते हैं हाथ या मुनिराज वमन कर देते हैं, मतलब वमित कर देते हैं उनके ऊपर, राजा रानी के ऊपर पूरा वमित कर देते हैं। तब भी ऐसी स्थिति आने पर भी दोनों राजा रानी के मुख पे जरा सी भी ग्लानि का भाव नहीं आता है, वो मुनिराज के शरीर अपने से ही पहले मुनिराज के शरीर को साफ करने लगते हैं वो राजा। तो जब ये सब क्रिया हुई उसके बाद वो जो मुनिराज रूपी जो देव थे वो अपने असली रूप में आते हैं और बोलते हैं कि हे राजा वास्तव में सच्चा निव चिकित्सा अंग तो यही है। निव चिकित्सा मतलब किसी भी साधर्मी के किसी भी मुनिराज के सच्चे गुरुओं के अगर शरीर आदि में कुछ भी मतलब ऐसी व्याधि हो जाती है तो उनको देखकर हमें कभी भी घृणा का भाव अपने मन में नहीं लाना, उसी का नाम आश्रित निव चिकित्सा है। मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो सम्यक दृष्टि जीव कभी भी साधर्मी को देखकर किसी भी अवस्था में साधर्मी को देखकर वो उसके शरीर के परिणाम से उसके परिणाम बिगड़ते नहीं है, उसका नाम है निर्व चिकित्सा। उसके बाद में आता है अमूर्ण दृष्टि, चौथा नंबर आता है अमूर्ण दृष्टि तत्व कुतत्व पिछाने, मतलब अमूर्ण दृष्टि अंग मतलब जिसके अंदर उसको समझ में आए कि क्या वास्तव में ग्रहण करने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, नहीं है, और जिसकी जो अमूर्ण मतलब मूर्ता से रहित, मूर्ता मतलब पागलपना, पागलपने से रहित जो दृष्टि है जो स्थितिकरण है, मतलब कि वो कभी भी हिलेगा नहीं, अमूर्ण दृष्टि में प्रसिद्ध आती है रेवती रानी। आठों अंगों में एक एक प्रसिद्ध व्यक्तियों की कथा हमारे अनुयोग में आती है, अमूर्ण दृष्टि अंग में आती है रेवती रानी की कथा कि रेवती रानी जो थी उनके यहाँ पे मतलब उनके जो पति थे जो महाराज थे उन महाराज ने उनको धर्म से डिगाने के लिए मतलब बोला कि ऐसे ही सबने बोला कि रानी कभी अपने धर्म से डिग नहीं सकती। तो एक देवता ने मतलब उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, सबसे पहले नगर में ब्रह्मा के रूप को धारण करके आए, जो ना ब्रह्मा का रूप होता है, तो ब्रह्मा का रूप धारण करके आए और पूरे नगर में बिल्कुल ऐसा हो गया, सब लोग दर्शन करने आ गए कि साक्षात भगवान आ गए, ये आ गए। तो तत्व रानी का जाने का सवाल ही नहीं था क्योंकि वो तो हम लोग मानते ही नहीं है, बराबर है। फिर अगले दिन विष्णु के रूप में आए, अगले दिन महेश के रूप में आए, तीन दिन तक रानी नहीं गई। फिर राजा ने बोला आप ऐसा करो जैनों के वेश में आओ, तो चौथे दिन तीर्थंकर के वेश में नगर में आए और कैसा साक्षात जो समर्षण में तीर्थंकर विराजमान होते हैं उतना ही बड़ा समर्षण उतना ही वैभव वाला, ऐसी 20,000 सीढ़ियां 12 कोठे बिल्कुल गंदगी की रचना और जैसे भगवान की दिव्य धनी गिरती है सेम टू सेम, कोई भी देखकर डुप्लीकेट नहीं कह सकता, मतलब होते हैं फर्स्ट कॉपी, मतलब जो कोई ऐसे बता नहीं सकता कि ये डुप्लीकेट है, ऐसा वो धर्म सभा चलने लगी। तो अच्छे से अच्छे सब लोग चले गए कि तीर्थंकर हमें इस क्षेत्र में तीर्थंकर आ गए, तो सब लोग दर्शन के लिए जाने लगे। लेकिन रेवती रानी के मन में दृढ़ श्रद्धा थी कि एक काल में भरत क्षेत्र में एक चौबीसी में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, 24 के अलावा कोई तीर्थंकर हो नहीं सकते, तो इससे निश्चित है कि 25वें तीर्थंकर आ ही नहीं सकते, तो रानी तब भी अपने धर्म से नहीं डगती है और वहाँ पे नहीं जाती है। पर ऐसा अमूर्त दृष्टि कि चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, ये चलो एक उदाहरण के लिए अनुकूल परिस्थिति, और माने जाए कैसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति में कैसा ही संकट आ जाए हमारे ऊपर, हमारा कुछ भी नष्ट हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी हम जैन धर्म के अपने सच्चे धर्म के ऊपर श्रद्धा नहीं छोड़े, उसी का नाम वास्तव में अमूर्त दृष्टि है। तो जो सम्यक दृष्टि होता है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का धारी जो जीव होता है, उसके जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए लेकिन वो अंतरंग में अपने धर्म के अपने आत्म अनुभव की श्रद्धा कभी भी छोड़ता नहीं है, उसका नाम है वास्तव में अमूर्त दृष्टि अंग। बराबर है। इन चार की चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। उसके आगे वाले चार, बारहवें छंद की तीसरी लाइन, निज गुण अरूप पर अगुण ढाके, क्या लिखा है? निज गुण मतलब अपने गुणों को अरूप पर अवगुण ढाके, मतलब दूसरे के अवगुणों को और अपने गुणों को जो ढाकता है। ढाकता है मतलब कैसा? कि किसी दूसरे व्यक्ति ने, किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कारण से कभी जैन दर्शन का कुछ गलत हो गया। जैसे इसके अंदर एक जैन भक्त सेठ की कथा आती है। क्या कथा आती है? कि एक चोर था, मैं आपको कथा इसके लिए सुना रहा हूँ छोटे छोटे संक्षिप्त में दो लाइन में, कि आपको उस अंग की वास्तविक महत्ता मालूम पड़ेगी। कि ये जो अंग है, इस अंग का नाम है उपगुहन। उपगुहन मतलब होता है छुपाना। उपगुहन मतलब होता है छुपाना, मतलब उसको अंदर डाल देना, मतलब अपने अंदर लेकिन बाहर भी नहीं निकालना। जैसे मुझे पता है कि आपके अंदर ये अवगुण है, तो मुझे पता है लेकिन मैं उसको सामने किसी के कहता नहीं हूँ, मतलब दूसरे को बताता नहीं हूँ, उसका नाम है उपगुहन। तो इसकी कथा आती है कि एक जिन भक्त सेठ था, उस सेठ के घर पे एक जिन मंदिर था, उसमें रत्नों की प्रतिमाएं थी। तो उन रत्नों की प्रतिमाओं बहुत अमूल्य होती है, इसलिए रत्न की प्रतिमा थी तो बहुत अमूल्य थी। तो जो चोरों का एक दल था, उनमें ये शर्त लगी कि कौन उन पेट के घर से वो रत्न की प्रतिमा को चुरा कर लाएगा। तो एक चोर ने कर लिया कि मैं चुरा के लाऊंगा। वैसे वहाँ पे पहरा रहता है, कोई जा नहीं सकता। तो अब उसने चुराने तो था, तो उसने क्या किया कि एक ब्रह्मचारी का वेश किया, जो जैन ब्रह्मचारी तो क्षुल्लक, ऐसे उनका क्षुल्लक का वेश धारण किया, क्योंकि सामान्य वेश में जाता तो कोई अंदर घुसने देता नहीं। क्षुल्लक का वेश धारण करके सेठ के यहाँ गया। सेठ ने उनको समझा कि चलो ये भी कोई चालक मतलब व्रति है, तो उनको अपने यहाँ पे रख लिया, अपने यहाँ पे स्थान लिया। और एक दो दिन जाने के बाद जब सेठ कुछ कहीं और गए थे, तो उसने अपना असली रूप दिखाया। उस प्रतिमा को अपने जो एक क्षुल्लक क्या करते, एक लंगोट धारण करते तो एक वस्त्र रखते, दो ही चीज होती है अलग के यहाँ। तो अपना जो वस्त्र था, उस वस्त्र में उस प्रतिमा को छुपाया और भागने लगा। लेकिन रत्न की प्रतिमा होती है वो तो अंधेरे में चमकती है, तो वो रत्न की प्रतिमा चमकी तो जो पहरेदार थे उनको मालूम पड़ा कि कोई चुरा के लेके जा रहा है। तो वो पहरेदार आगे पीछे पीछे भागने लगे और वो आगे आगे भागने लगा प्रतिमा लेके। तो जैसे जैसे भागता गया, आगे वो सेठ मतलब जो रास्ते में जा रहे थे वो सेठ मिले और सेठ के पास वो पहुंचा। पहरेदारों ने तभी उसको पकड़ लिया और सेठ के पास लिए गए। पहरेदारों ने बोला कि महाराज सेठ जी, ये आपके यहाँ से प्रतिमा चुरा रहे थे। तो अब सेठ ने क्या सोचा कि इनका वेश क्या है? क्षुल्लक का वेश है। अगर मैं इनको चोर कहता हूँ तो किसकी बदनामी होगी? जैन धर्म की बदनामी होगी, क्योंकि सबको क्या मालूम, क्या लगेगा कि जैन साधु ऐसे कार्य करते हैं, जैन साधु चोरी का कार्य करते हैं। तो सेठ ने सब कुछ पता होते हुए भी उन सिपाहियों को क्या कहा कि मैं, अरे ये कोई चोर नहीं है, ये प्रतिमा तो मैंने ही इससे मंगवाई थी, ये प्रतिमा तो मैंने ही इनको कहा था कि वहाँ से लेकर मेरे पास आओ। तो ऐसा कहकर सेठ ने क्या किया, मतलब अपने जैन दर्शन की जो हानि होनी थी उस हानि को रोक दिया। उसको कहते हैं उपगुहन अंग। इसकी एक और कथा भी आती है, ऐसी एक दो कथाएं और आती है। पुराणों की कथा वास्तव में क्या करती है कि हमारे अंदर की जो श्रद्धा है उसको और वृद्ध करती है। कि वास्तव में अगर हमें साक्षात किसी के अवगुण भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको हम अपने अंदर ही रखें, किसी दूसरे सामने वाले से उसके अवगुणों का बखान ना करें और अपने गुणों का भी, क्या लिखा, निज गुण अरुण पर अवगुण ढाके, कि अपने गुणों को भी नहीं और पर गुण को भी नहीं। देखिए पेज नंबर 85वां नंबर, पोतानी प्रशंसा करवा वाला गुणों अने बीजानी निंदा करवा वाला दोषों ने ढाकवा तथा आत्म धर्म ने वधारवो तथा निर्मल राखवो दूषित न थवा देवो, ये उपगुहन अंग से। बराबर, कि स्वयं की प्रशंसा करने वाले गुणों को भी, कि कोई हमारी प्रशंसा करे और हम कहाँ चढ़ जाए, हाँ चने के झाड़ पर चढ़ जाए। चने का झाड़ होता है कि नहीं होता ये पता नहीं है, लेकिन हाँ ये पोएम वो चलती है कि चने के झाड़ पर चढ़ जाए। एक वो वाक्य आता है, क्या होता है कि किसी ने मंदिर में दान दिया, तो गुरुदेव आदि तो बहुत बोलते थे ना कि ये सब तो धूल है, किसी ने मंदिर में दान दिया तो उसको क्या लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। तो एक एग्जांपल आता है ऐसे ही कि जैसे दस लक्षण चलते हैं ना, दस लक्षण के अंदर सभा बिल्कुल खचाखच फुल रहती है, तो उस समय जो त्याग का दिन आता है तो सब लोग दान आदि लिखाते हैं, दस लक्षण में सब लोग अपने अपने हिसाब से दान लिखाते हैं। तो ऐसे एक सेठ थे, वो कैसे बहुत कंजूस सेठ थे, वो कभी भी कुछ भी खर्चा करते ही नहीं थे, सब लोग उनकी कंजूस वृत्ति को जानते थे कि ये कुछ भी होगा लेकिन ये कभी एक पैसा भी देने वाले नहीं है। तो उन सेठ को आगे जगह भी नहीं मिलती थी, वो आके पीछे जहाँ पीछे बिल्कुल फुल हो जाते हैं तो पीछे क्या चप्पलें खुली रहती हैं वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल हॉल फुल प्रवचन चल रहे हैं, बिल्कुल हॉल फुल है, तब कहाँ बैठेंगे, बिल्कुल जहाँ चप्पल आदि उतरी हुई है वहाँ पीछे जाकर बैठ जाते थे, कोई उनको पूछता भी नहीं था। तो एक दिन सेठ ने क्या किया, सभा समाप्त हुई और माइक से कुछ अनाउंस हुआ होगा, तो सेठ जी ने हाथ ऊपर किया तो सबने देखा कि सेठ जी क्या बोलने जाते हैं। तो सेठ जी ने बोला कि चलो आज की उसमें करो, सेठ जी ने बोला कि मैं 1 करोड़ रुपए मंदिर को देना चाहता हूँ। तो एक बार क्या होगा, पूरी सभा टर्न कि क्या हुआ, एकदम से क्या चेंज हुआ, सब लोग सेठ जी वाले आने तो जगह तो भाई आने तो आने आने, मतलब होता है ना एक जनरल मानसिकता है कि आने तो सेठ जी को बिल्कुल स्टेज पे लाया गया, उनको स्टेज पे चेयर पे बिठाया गया सब कुछ। फिर सेठ जी ने बोला कि मैं कुछ शब्द माइक पर बोलना चाहता हूँ। तब सेठ जी, अभी 1 करोड़ दिया तो मना कौन करेगा, करेगा। तो सेठ जी को बुलाया, भाई बोलने दो माइक पे। अब माइक पे बुलाया तो सेठ जी ने बोला कि देखो पंडित जी या जो भी वहाँ थे, ये बात तो आप कुछ भी कह लो लेकिन महत्ता तो धन की ही है, महत्ता तो इसकी है धन की है। देखो पहले मैं वहाँ पर मतलब मैं वहाँ पर बैठा था, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा था, जैसे ही मैंने बोला कि मैं 1 करोड़ दूंगा तो सब लोगों ने कैसे मेरी आवा भगत की, मुझे स्टेज पे बिठा दिया, मेरे को हार वार पहनाए। तो महत्ता तो आप कुछ भी कहो, सब कुछ छोड़ने कहो, लेकिन महत्ता तो किसकी है, धन की है। तो यहाँ तक तो हुआ एग्जाम्पल। अब पंडित जी ने जो उत्तर दिया वो सुनना, ग्रहण करने की चीज जो है कि महत्ता धन की नहीं है, धन तो उस वक्त भी तुम्हारे पास था जब तुम चप्पलों के यहाँ बैठे थे, धन तो उस वक्त भी तुम्हारे पास था और धन तो अभी भी तुम्हारे पास है, महत्ता है तुम्हारे त्याग की, महत्ता किसकी है, तुम्हारे त्याग की। क्योंकि तुम वहाँ बैठे थे जब भी तुम्हारे पास करोड़पति थे, जब भी तुम्हारे पास पैसा था, अब भी तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर त्याग की भावना आई वो भावना के कारण तुमको ये आदर सत्कार मिला है, तुम्हारे पैसे के कारण तुम्हें आदर सत्कार नहीं मिला है। तो उसी प्रकार की ये जो जितनी बातें लिखी कि वास्तव में कि हमारे जो हमारे कोई हमारी ज्यादा प्रशंसा करे तो उससे ज्यादा फूलना भी नहीं, और किसी के जो अवगुण दिखे उनको किसी दूसरे के सामने ज्यादा कहना भी नहीं, उसका नाम वास्तव में कौन सा अंग है, उपगुण। ये कौन से नंबर का था, 5वें नंबर का। वापस से पहला कौन सा है, जीवन के, दूसरा अधिकार के, तीसरा दिव्य चिकित्सा, चौथा अमूर दृष्टि और 5वां उपगुहन। अब छठा आगे क्या लिखा, वा निज धर्म बढ़ावे, छठे में देखे पेज नंबर 81। काम क्रोध लोभ वगैरह कोई पण कारणे अथा सम्यक अने चारित्र थी भ्रष्ट थती वक्ते पोता ने अने बीजा ने फरीथी तेमा स्थिर करवो ते स्थितिकरण अंग छे। 12वें श्लोक की 4थी लाइन, कामाधिकर भ्रष्टे चिगते निज पर को सु दिलावे, क्या लिखा है कि किसी भी प्रकार से स्वयं को भी और सामने वाले साधर्मी जन को भी इस धर्म के ऊपर पक्का रखे, धर्म की विश्वास उसको पक्की रखे। मतलब अगर सामने वाला, जैसे मैं पक्का हूँ मैं धर्म से दिखता नहीं हूँ, लेकिन मेरा कोई भी साधर्मी अगर धर्म से डिग रहा हो, उसके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई और वो धर्म से डिग रहा है, तो मैं हर तरह से प्रयास करके उसको पुनः उस धर्म के ऊपर लाने का प्रयास करूँ। इसके अंदर भी कथा आती है एक मुनिराज की, नाम शायद मैं भूल गया, वारिसेन मुनि या वज्रगाल मुनि, किसी वज्रजन मुनि, दोनों में से किसी कथा है। कथा ऐसी आती है कि उन्होंने जब दीक्षा धारण की, दीक्षा धारण करने के साथ उनका एक परम मित्र था, पुष्प डाल करके एक उनका परम मित्र था, वो जब नगर में गए तो पुष्प, मतलब नगर में उसके उनके मित्र के यहाँ पे उनका आहार हुआ, तो आहार के बाद जब मुनिराज जाते हैं तो घर का मुखिया उनको कुछ आगे तक छोड़ने जाता है। जैसे हम लोग होते ना, घर में कोई मेहमान आता है तो हम लोग गेट तक छोड़ने जाते हैं, ज्यादा घनिष्ठ होगा तो हम उसको बिल्डिंग के नीचे तक गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। तो ये तो मुनिराज है, तो मुनिराज के आहार के पश्चात उनका मित्र उसको छोड़ने गया। वो कैसे बोले कि मैं वापस जाऊँ, क्योंकि मुनिराज जब तक नहीं कहे कि बहुत दूर आ गए तो वापस कैसे जाऊँ, पर मुनिराज कुछ कह नहीं रहे, चलते जा रहे। तो अब वो मुनिराज को बताने लगा कि हे मुनिश्री, देखो ये तालाब आ गया जहाँ पर हम बचपन में क्रीड़ा करते थे। मतलब वो ऐसे ऐसे बता के क्या कहना चाह रहा था कि हम इतनी दूर आ गए, कि हम अपने घर से इतनी दूर आ गए, 3 किलोमीटर आ गए। देखो ये वो जगह है जहाँ पर हम कभी आया करते थे। लेकिन मुनिराज तो कुछ कह ही नहीं रहे, चलते चलो। और लेकिन बिना मुनिराज की आज्ञा के वापस भी कैसे जाया जाए। अब चलते गए, मुनिराज अपने संघ में पहुँच गए। संघ में पहुँच कर मुनिराज ने कहा अपने गुरु से कि ये पुष्प डाल है और इसके दीक्षा की भावना है। भावना उसकी कम इतनी नहीं थी, इतना जैन दर्शन पे श्रद्धा थी, दीक्षा पे श्रद्धा थी, लेकिन इतनी भावना नहीं थी। अभी अभी नई शादी हुई थी तो ऐसी भावना हिल रही थी, लेकिन अब क्या करें, मुनिराज ने कह दिया, मित्र भी है और मुनिराज भी है, तो उनकी बात को कैसे टाला जाए। तो दीक्षा धारण कर ली। 1 वर्ष निकल गया, 2 वर्ष निकल गया, 12 वर्ष दीक्षा के निकल गए, लेकिन फिर भी अंदर में वो स्थिति, यहाँ जो अंग पन पड़ा ना, स्थितिकरण अंग, वो स्थिति, वो श्रद्धा, मतलब अंदर में सब कुछ बराबर था लेकिन अंदर में रुक नहीं पा रहे थे। तो वो मुनिराज को पता पड़ा, जो उनके मित्र थे कालीसेन मुनि, उनको पता पड़ा कि अभी भी पुष्प डाल के मन में कोई शंका या कुछ दोष है। तो उन्होंने क्या किया कि वो उसको, उनको लेकर कि चलो आज अपन नगर में आहार के लिए चलते हैं। वो नगर में गए। वारिसेन मुनि वास्तव में राजकुमार थे, राजा थे, उन्होंने राजपाट छोड़कर दीक्षा धारण की थी। तो वो नगर में गए तो वो अपने घर की तरफ जाने लगे, अब जो उनका महल था उस महल की तरफ वो विहार कर जाने लगे। तो सामने से उनकी माता ने देखा, चेलना रानी करके उनकी माता थी, उनकी माता ने देखा कि मुनिराज हमारे, मतलब ये जो मेरा पुत्र है जो अभी वर्तमान में मुनिराज है, वो हमारे घर की तरफ क्यों आ रहे हैं, तो अगर मन में उनके थोड़ी शंका हुई तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, 2 पाटे रखे, एक सोने का पाटा रखा और एक लकड़ी का पाटा रखा। पाटा मतलब जिसमें बैठते हैं चौकी। तो उन्होंने एक सोने का पाटा रखा और एक लकड़ी का पाटा रखा। तो वारिसेन मुनिराज से वो तो आकर लकड़ी के पाटे के ऊपर बैठ गए। तो माता को ये तो पक्का हो गया कि मुनिराज तो दृढ़ है, जरूर कुछ और कारण है जिसके कारण से वो यहाँ पर आए हैं। मुनिराज बैठ गए, उनके वो मित्र थे वो भी बैठ गए, वो सोने के पाटे के ऊपर बैठ गए वो जाके। अब जो वारिसेन मुनिराज थे उनकी जो पूर्व की पत्नियां थी, वो पत्नियां एक एक करके आने लगी। पहले राजाओं की तो काफी पत्नियां होती थी, तो उनकी 12 शादियां हुई थी, तो 12 जो पत्नियां थी वो एक एक करके मुनिराज के दर्शन के लिए आने लगी। तो जो पुष्पडाल थे, जो उनके मित्र पुष्पडाल थे, वो देखने लगे कि मेरा तो क्या वैभव था, मेरा तो एक छोटा सा मकान था और मेरी तो एक पत्नी, ऐसी एक ही पत्नी थी जिससे मैं इतना मोहित हो रहा हूँ। वारिसेन मुनिराज का तो इतना बड़ा महल है, इतना सारा वैभव है, इतनी सुंदर सुंदर इतनी स्त्रियाँ हैं, तो भी मुनिराज इन सब को छोड़कर अपने स्वभाव में लीन है, तो इतना निश्चित है कि इन सब में सुख नहीं है, सुख वास्तव में अपने अंदर ही है। तो ऐसा करके उनके मन में जो शंका थी वो शंका का निवारण हो गया। और फिर वारिसेन मुनिराज ने पूछा कि हे पुष्पडाल, चलना है कि रुकना है। तो पुष्पडाल ने कहा कि अब मुझे कभी रुकना नहीं है, अब तो मैं सीधे मोक्ष में जाकर ही रुकूंगा, उससे पहले रुकूंगा नहीं। तो इसका नाम है स्थितिकरण अंग, कि अपने कृत अपनी श्रद्धा तो दृढ़ रखना ही रखना, साथ में साधर्मी जीव अगर कोई कभी किसी कारण से इस धर्म से डिग रहा हो तो उसको भी इस धर्म से लाने का हर प्रयास, तरह से प्रयास करना, उसको हर तरह से अपने धर्म की श्रद्धा पक्की रखना। बराबर है, कितने हो गए, 6। अब 7वां, 13वे का पहली लाइन, धर्मी सो गो बच्चे प्रीतिसम कर जिन धर्म दिपावे। देखिए पेज नंबर 81-7। पोताना सहधर्मी प्राणी ऊपर वासराणाम ऊपर हेत राशि गायनी माफक निरपेक्ष प्रेम करवो ते वात्सल्य अंग से। कि वास्तव में अपने साधर्मी के ऊपर कैसा स्नेह रखना, जैसे गाय अपने बछड़े के ऊपर रखती है। जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े के ऊपर स्नेह रखती है, उसी प्रकार से एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति क्या होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, वात्सल्य का भाव होना चाहिए। अब वो वात्सल्य आप किसी भी तरह से आप देख सकते हो, किसी भी परिस्थिति में किसी भी साधर्मी को सहायता करना, किसी भी साधर्मी का कुछ कार्य करना, क्योंकि क्या है, वो मेरा साधर्मी है। बाकी तो लौकिक संगीजन है, लेकिन ये मेरा धर्म का साथी है। साधर्मी वास्तव में कौन होता है? धर्म सहचर, जो धर्म का साथ चलता है, कि मेरे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आए। क्योंकि ये साधर्मी मतलब जो मेरे धर्म को निरंतर वृद्धि करने के लिए जो प्रयास कर रहा है, वही वास्तव में साधर्मी है। तो ऐसे साधर्मी के साथ, कि ये जो मेरा साधर्मी है, उसके साथ सदैव वात्सल्य का परिणाम रखना चाहिए। देखिए जो गाय बछड़े का उदाहरण दिया ना, तो गाय बछड़े का उदाहरण मतलब कि गाय जैसे बछड़े को पुचकारती है अपने साथ, जैसे बिल्कुल उसको जीभ से पुचकारती है ना, ऐसे ही साधर्मी के साथ बिल्कुल गौ के गाय का बहुत सरल होती है। गाय उतनी सरल, सरलता के लिए बोलते ना कि ये तो क्या है, गाय है ना। जैसे किसी घर में लड़की वाले को देखने आते तो हमारी लड़की तो गाय है, तो ऐसे गाय मतलब क्या हुआ, वह गाय मतलब ये नहीं है कि वो चार पैरों वाली गाय है। तो अब गाय कहने से क्या मतलब है कि गाय जितनी सीधी होती है उतनी सीधी ये है, ऐसा उपमा देते। तो उसी प्रकार की यहाँ पे गाय का जो वात्सल्य बताया, वो क्यों बताया कि गाय अपने बच्चे पे जिस प्रकार वात्सल्य का भाव रखती है, उसी प्रकार वात्सल्य का भाव एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति रहना चाहिए। लेकिन उसमें अभी क्या है कि हमारे घर में हमारा पुत्र है, तो हम उसके ऊपर जो वात्सल्य करते है ना, तो वो वात्सल्य कभी कभी इतना बढ़ जाता है, जैसे गाय एक बछड़े को जीभ से चाटती रहे चाटती जाए चाटती जाए, तो बछड़े की जो त्वचा होती है स्किन, वो बहुत कोमल होती है। तो अगर कंटिन्यूसली चाटती जाए तो वो स्किन फट जाती है और वहाँ पे खून ब्लडिंग चालू हो जाता है। तो वैसा वात्सल्य यहाँ नहीं बताया है, वो वात्सल्य तो क्या है, जैसे हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र कैसी भी जिद कर रहा है, वो जिद चाहे सही है चाहे गलत है, लेकिन हमारा मोह उस पुत्र के ऊपर टिका है, उसके कारण हम उसकी जिद पूरी कर रहे हैं। चाहे वो जिद सही है एक तरह से चाहे नहीं है, लेकिन वहाँ वात्सल्य नहीं है, वहाँ पे मोह है। वहाँ क्या है, मोह है, वहाँ ममत्व का परिणाम है। लेकिन साधर्मी के साथ, वो साधर्मी फिर चाहे कोई भी हो सकता है, पुत्र भी साधर्मी हो सकता है, लेकिन धर्म की अपेक्षा से कि ये भी हमारे धर्म को आगे बढ़ने में कारण होगा। और ऐसे साधर्मी के साथ गौ बछड़े के समान जो भावना रखना, वात्सल्य का परिणाम रखना, उसका नाम है वात्सल्य अंग। और सबसे अंत में है, इन गुण से कर जिन धर्म दिपावे, कि जो जैन धर्म की वृद्धि करे। अज्ञान अंधकार में हटावी ने विद्या वड़ वगैरह थी, शास्त्रों में कहे यथा योग्य रीति प्रमाणे पोथाना सामर्थ्य प्रमाणे जैन धर्म नो प्रभाव प्रकट करवो ते प्रभावना अंग कहवाए। कि वास्तव में जैन धर्म की प्रभावना करना, किस प्रकार से अपने अज्ञान अंधकार को हटाकर, सबसे पहले तो अपने अज्ञान अंधकार को हटाकर, फिर विद्यावल वगैरह शास्त्रों में कहे यथा योग्य रीति प्रमाणे जिन धर्म की श्रद्धा करना, उसका नाम वास्तव में प्रभावना अंग है। देखिए इसके अंदर जो प्रसिद्ध है उनकी कथा आती है, वज्र हुए रानी की कथा आती है, नाम मैं आपको अगली बार उसमें बताता हूँ, या सम्यक की कथा करके बुक आती है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी सम्यक की कथा, उसमें आठों अंगुल कहानी है। उसमें क्या है कहानी में,
व्यक्ति इस मुनिराज से और मुनिराज नगर के जो बीच का चौक आदि होता है वहाँ से विहार कर रहे थे। सामने एक कन्या, एक मतलब बिल्कुल गरीब सी कन्या वहाँ पे बैठी थी, तो उन मुनिराज ने के मुंह से अनायास ही निकला, देखो परिणाम मतलब विचित्रता, इस गति की विचित्रता, जो ये कन्या अभी गरीब दिख रही है, एक महीने के पश्चात ये कन्या इस नगर की पटरानी बनेगी। क्या कहा कि ये जो अभी गरीब कन्या दिख रही है वो एक महीने के पश्चात इस नगर की क्या बनेगी, पटरानी बनेगी। तो उसी समय वही पास में से बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे, तो उन्होंने क्या सुना कि जैन साधु ने कहा है तो ये बात बिल्कुल सत्य होगी, तो उन्होंने उस कन्या को अपने साथ ले गए, बौद्ध की दीक्षा दिला दी, बौद्धों की पढ़ाई उसको पढ़ाई, और एक महीने में जो राजा थे वो राजा ने उनको देखा, कहीं भी देखा उनको, और उस पर मोहित हो गए, और राजा ने उनके सामने बौद्धों के सामने कहा कि मैं इन कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन उन राजा की पहले एक रानी थी जो जैन धर्म की श्रद्धालु थी, तो बौद्धों ने ये शर्त रखी कि अगर आप इन रानी को पटरानी बनाओगे तो ही हम आपको इनसे विवाह करने देंगे। लेकिन राजा तो क्या था, बिल्कुल पागल हो गया था उसको देख के, तो राजा ने उनकी शर्त मंजूर करी और उनको पटरानी बना दिया। अब वो राजा की पटरानी बन गई तो बौद्ध धर्म को बढ़ाने का सब कार्य करने लगी। तो जब अष्टानिका पर्व आया तो अष्टानिका पर्व में हर वर्ष की भांति जो जैन श्रद्धाली रानी थी अनंतमती अनंतमत जो भी नाम था, वो हर दिन का क्या होता था हर साल में कि वो एक बहुत बड़ा जुलूस निकालती थी जैन धर्म की प्रभावना का। तो जैसे ही पट रानी को पता पड़ा तो उन्होंने राजा को बोला कि जैनों से पहले बौद्धों का जुलूस निकलेगा, जैनों से पहले क्या होगा, बौद्धों का जुलूस निकलेगा। तो राजा भी मान गए, लेकिन ऐसा जब घोषणा हुई तो रानी नगर में जो वज्रजंग मुनिराज थे उनके पास जाती है और उनसे बोलती है कि हे स्वामी, जैन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है, आप कैसे भी करके संकट को दूर करो। फिर मुनिराज जो थे उनके उसी समय दर्शन करने के लिए बहुत सारे विद्याधर आए हुए थे, तो मुनिराज ने एक विद्याधर को कहा कि देखिए जैन धर्म के ऊपर संकट आया है। तो विद्याधर स्वयं जैन धर्म के श्रद्धाली, क्या होता है कि साधर्मी को अगर पता पड़े कि धर्म पे संकट आया है तो वो उस संकट को दूर करने का हर संभव प्रयास करता है। तो जैसे ही विद्याधर को पता पड़ा कि ये जैन धर्म में संकट की घड़ी आई है, तो विद्याधर तो बहुत बड़े होते ना, जिनके पास शक्तियाँ होती है देवी आदि, तो विद्याधरों ने बहुत बड़ा एक विशाल रथ का निर्माण किया और बहुत बड़ा जुलूस, इतना बड़ा जुलूस की राजा वो देखते रह गए, सभी बहुत आदि भी देखते रह गए कि वास्तव में कि जैन, सबने फिर सबको लगा कि जैन धर्म कोई बहुत बड़ा धर्म है कि जिसके सामने कोई दूसरा धर्म दिखता नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने वज्रजंग मुनिराज ने वो जैन दर्शन की प्रभावना की। तो ऐसे ये तो खाली कथा है, ऐसे जितने प्रभावना आदि के कार्य है, जिस भी तरह से जैन धर्म आगे बढ़े, देखिए वो कार्य कैसा भी हो सकता है, हमारे द्वारा हमारे घर में, जैसे घर में बालक माँ होती है, माँ के द्वारा अपने बच्चे में वो धर्म जाना, बस अपने पिता के द्वारा अपने बालक में वो धर्म के बीज डालना, अपने भाई के द्वारा बहन में, बहन के द्वारा मतलब किसी भी तरह से एक मित्र को दूसरे मित्र में डालना, किसी भी तरह से हमारे धर्म की हम प्रभावना करते हैं, उस धर्म को बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो वो सभी प्रभावना अंग में आता है। तो वास्तव में जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो जीव इन 8 अंगों को धारण किए हुए होता है। कौन कौन से 8 अंग है, सबसे पहला है संकेत, दूसरा है विकास, तीसरा है निर्म चिकित्सा, चौथा अगुण दृष्टि, पांचवा छठा वृद्धिकरण, सातवा वात्सल्य और आठवा प्रभावना। इस प्रकार ये सम्यक के जितने अंग है 8 अंग है, और इन्हीं 8 अंगों के विपरीत, इन 8 अंगों के विपरीत क्या होते हैं, सम्यक के 8 दोष, जो 25 दोष है सम्यक के, उन 25 दोषों में जो 8 दोष है वो 8 दोष कैसे हैं? अब 8 दोषों के नाम क्या होंगे, सब में से नी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला संस्का, सबसे पहला संकेत मतलब शंका, दूसरा कांचित मतलब कांसा, तीसरा बी चिकित्सा इन चिकित्सा का बी चिकित्सा, चौथा आठ जाएगा दूर दृष्टि, पांचवे में गुहज, पांचवे में गुहज, छठे में अस्थितिकरण, छठे में अस्थितिकरण, सातवें में अवात्सल्य और आठवें में अपभावन, हम कह सकते हैं अपभावन। देखिए इसके अंदर भी नाम लिखे हैं, एक बार हम इन सबके नाम भी देख लेते हैं। देखिए पेज नंबर 81 पे आठवें के नीचे आ गुणों अर्थात अंगोटी उल्टा, पहला शंका, दूसरा सांचा, तीसरा विचिकित्सा, चौथा मूढ़ दृष्टि, पांचवा अनुपगुहन, पांचवा अनुपगुहन, छठा अस्थितिकरण, सातवा अवात्सल्य और आठवा अप्रभावना। आ सम्यक्तना आठ दोष है, तेने हमेशा दूर करवा जोइए, बराबर है। तो हमने क्या देखा था कि हमने प्रारंभ किया था सम्यक की भूमिका से लेकर, और फिर हमने कि सम्यक के अंदर जो 25 दोष है, उन 25 दोषों को अगर जीव को सम्यक प्राप्त करना है, बराबर है ना, किसको सम्यक प्राप्त करना है, किसी जीव को सम्यक प्राप्त करना है ना, कोई जीव है, कौन जीव है, मैं हूँ, कौन है, मैं हूँ, बराबर है ना। ऐसा नहीं मान लेना कि पंडित जी ने लिखा किसी जीव को, तो किसी जीव को, किसी जीव को नहीं, किसी जीव मतलब मैं, कि अगर मुझे सम्यक प्राप्त करना है, अगर मुझे इस संसार में जो वास्तव में दुख है, जिसको मैंने सुखाभास रूप मान रखा है, अगर वास्तव में मुझे उसमें दुख लगता है, तो दुख से दूर होने का उपाय सम्यक की प्राप्ति। तो सम्यक की अगर मुझे प्राप्ति करनी है, तो मुझे इन 25 दोषों से दूर होना पड़ेगा और इन 8 अंगों को धारण करना पड़ेगा, बराबर है। वापस एक बार 8 अंग, पहला निसंकित, दूसरा निकांचित, तीसरा निर्विचिकित्सा, चौथा अनुदृष्टि, पांचवा उपगुहन, छठा स्थितिकरण, सातवा अस्थल्य, आठवा प्रभावना। ये 8 अंग किसके हैं, सम्यक दृष्टि जीव के 8 अंग है। चलिए आगे, इसके दोष भी, वैसे तो तीसरी धार मुझे समाप्त करनी थी लेकिन जिसकी तो नहीं हो पाएगी, फिर भी चलिए आगे के जो दोष है उसको हम एक बार खाली श्लोक पढ़ते हैं। एक बार ऐसा करिए, वापस से 11वां, 12वां और 13वां तीनों श्लोक का एक बार हम पाठ करते हैं, क्योंकि जितना हम पाठ करेंगे ना उतना हमें वर्ड हमारे ख्याल में आएंगे। अर्थ तो हम सबको ख्याल में आ ही गया है, तो एक बार जब अपन पाठ करेंगे ना तो मन में अर्थ भी साथ में सोचते जाइएगा, ठीक है। 11वें से वसुमदारिणी वारी त्रिशता छठ अनाय धन त्यागो, शंकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित पाको, अष्ट अंग दोष पचीसो तीर्थे कहिए, बिन जाने से दोष गुण को कैसे सजिए गई, हमने जो 25 देखे थे 11वें में, हमने 25 देखे ना, सबसे पहले था 8 मद, सबसे पहले 8 मद, तीन ऊर्ता, आठ प्लस तीन कितने हुए? ग्यारह। तीन ऊर्ता के बाद छह अनायसन, ग्यारह प्लस छह सत्रह, उसके बाद आठ शंका अधिक दूर, सत्रह प्लस आठ पच्चीस। बराबर है। सबसे पहला आठ मद, सबसे पहला आठ मद, तीन ऊर्जा, छह अनायतन और आठ दोष, आठ संकालिक दोष। सबसे आठ प्लस तीन ग्यारह, ग्यारह प्लस छह सत्रह, सत्रह प्लस आठ पच्चीस। इस प्रकार ये सम्यक के पच्चीस दोष है। और पच्चीस दोषों में से आठ जो दोष थे उनका तो हमने पढ़ा। अब आठ दोष के बाद जो अगले आठ है वो आठ मद है, उस मद की चर्चा यहाँ पर की है। देखिए आठ अंक समझ में आया ना? एक बार भावार्थ मैं वापस से पढ़ लेता हूँ, पेज नंबर 79 पर पूरे आठ का भावार्थ। पहला, तत्व आज से आमज से बीजू नहीं, इन्हें बीजा प्रकारे पर नहीं, आ प्रमाणे यथार्थ तत्वों में अटल श्रद्धा थली, ते निशंकित अंग कहवाए छे। बराबर है कि शंका का नहीं होना निशंकित अंग है। नोंद, आवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव भोगों ने क्यारे पर आदरवा योग्य मानता नहीं, पर जेवी रीते कोई कैदी कैद खाना में इच्छा विना पर दुख सहन करे छे, तेवी रीते पोताना पुरुषार्थ नी नबड़ाई थी, गृहस्थ पद मां रहे छे, पण तेओ रुचि पूर्वक भोगों नी इच्छा करता नहीं, एटले तेने निशंकित अने निकांचित अंग हुआ में काई वांदो आवतो नहीं। बराबर है। कहते ना भरत जी घर में बैरागी। बराबर, ऐसे इसमें सम्यक दृष्टि का जो उदाहरण दिया ना कि कैद खाने में जैसे कोई व्यक्ति बिना इच्छा के दुख को भोगता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थी में बिना इच्छा के गृहस्थ के कार्य करता है, लेकिन अंतरंग में उसके सम्यक की श्रद्धा कभी भी विचलित नहीं होती। बराबर है। दूसरा, धर्म सेवन करी तेना बदला में संसार न सुखों की इच्छा न करवी, तेने निकांचित अंग कहवाए छे। बराबर है कि जैन दर्शन की श्रद्धा करके भगवान के दर्शन आदि से पूजन वंदन आदि से लौकिक वांछा करना नहीं, इसका नाम है निकांचित अंग। तीसरा, मुनिराज अथवा बीजा कोई धर्मात्मा ना शरीर ने मेला देखी ने घृणा ना करवी, तेने निर्विचिकित्सा अंग कहे छे। कोई भी साधन भी जीव के मुनिराज आदि के शरीर आदि को कोई रोग आदि से ग्रसित होकर देखकर घृणा आदि का भाव मन में नहीं लाना, उसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। चौथा, साचा अने खोटा तत्व ने परीक्षा करी ने मूर्ताओं अने अनायतनों में फसावू नहीं, से अमूर्त दृष्टि अंग है कि सच्चे और झूठे का ख्याल करके नारियल कहीं भी फोड़ना नहीं, नारियल मतलब अपना सर कहीं भी झुकाना नहीं। हमें वास्तव में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की सबसे पहले निर्णय करना कि यही वास्तव में सच्चे देव की जो परिभाषा है, जो वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, वही वास्तव में सच्चा देव है, उसके मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा गुरु है, और जिसमें इनकी बातें हैं वही सच्ची जिनवाणी है। उसके अलावा चाहे जगत में कोई भी हो, कोई मेरा कल्याण करने वाला नहीं है और कोई भी मुझे शरणभूत नहीं है, चाहे फिर वो कैसा ही भूत पिशाच निरंतर हो, चाहे क्षेत्रपाल पद्मावती हो, चाहे देवी हो, दहाड़ी हो, चाहे कोई भी हो, मेरे को जितने याद आए उससे नाम बोला, चाहे कैसा ही हो, कोई पति हो, कोई पत्नी हो, कोई आपको शरणभूत नहीं है, तो लेकिन सबसे पहले क्या कहा, अपने में सबसे पहले निशंकित निकांचित ये सब अंग रखना, सबसे पहले अपनी श्रद्धा को दृढ़ करना, उसके बाद किसी भी अनायतन आदि की श्रद्धा नहीं करना। बराबर है। इसका नाम अमूर्त दृष्टि अंग है। पांचवा, पोतानी प्रशंसा करवा वाला गुणों अने बीजा ने निंदा करवा वाला दोषो ने ढाकवा तथा आत्मधर्म ने वधारवो अथवा निर्मल राखवो दूषित न खावा देवो ते उपगुहन अंग से, कि वास्तव में कोई भी कितने ही अपने गुणों का वर्णन करे, बखान करे, तो उसमें ज्यादा फुलाना नहीं और दूसरों के अवगुणों को ज्यादा किसी से कहना नहीं, उसका नाम उपगुहन अंग है। उस नोन में उपगुण बीजू नाम उपग्रहण पण जनागम में आवे छे, जे थी आत्मधर्म में वृद्धि करवी तेने पण उपगुण कहेवामां आवे छे। ते श्री अमरचंद्र सूरी ए पोताना रचेला पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ना श्लोक नंबर 27 मां कह्युं छे, धर्माभिवर्धिनीय सदात्मनो माधव अधिभावनाय परदोष निह उपगुणम विधेयम उपग्रहणम गुणार्थम। तो ये अर्थ तो जाने दीजिए, इसका मूल अर्थ यही है कि वास्तव में कैसे भी आ जाए, मुनिराज को रखे ना, मुनिराज कभी असत्य नहीं बोलते, या मुनिराज कभी किसी मतलब कोई असत्य का असत्य नहीं बोलते। तो ऐसी भी कथा आती है भगवान में कि एक मुनिराज एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, एक मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठ कर ध्यान कर रहे थे, तो एक गाय वहाँ से निकलती है, उसके पीछे गाय के निकलने के 5 मिनट के पश्चात ही, जैसे मुनिराज यहाँ बैठे और गाय ऐसे निकल गई, के पश्चात ही एक कसाई हाथ में तलवार लेकर आया और मुनिराज से पूछा कि मुनिराज यहाँ से कोई गाय निकली है क्या? उसको ये कोई भी हो, सबको इतना पता है कि जैन साधु कभी असत्य बोलते नहीं है, क्योंकि सबको जैन धर्म की महानता है ना, तो उसको पता था कि ये झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने मुनिराज को बोला, कहा कि कोई यहाँ से गाय निकली है क्या? तो मुनिराज ने क्या कहा, देखिए उसमें ऐसी कथा आती है, दो तरह की कथा आती है, एक तो मुनिराज ध्यान में ही लीन रहे, मुनिराज ने कुछ कहा ही नहीं, मतलब मौन ही रहे, वो कुछ उत्तर देने से अच्छा मौन रहना ही उन्हें लगा। तो एक तो ये बात आती है, कहीं कहीं ऐसी भी बात आती है कि जब गाय निकली तो मुनिराज ध्यान में बैठे हुए थे, मतलब पद्मासन अवस्था में बैठे हुए थे, और गाय के भागने से उनको पता पड़ गया कि इसके पीछे कोई शिकारी लगा हुआ है। तो मुनिराज ने, क्योंकि मुनिराज तो बहुत ज्ञानी होते हैं, उनको तुरंत ख्याल में आ गया कि वो आके मुझसे ऐसा पूछेगा। तो मुनिराज जब ध्यान में बैठे थे तो वो क्या हुए, वो खड़े हो गए, पद्मासन में बैठे थे तो वो खड़गासन अवस्था में आ गए। तो जब उस व्यक्ति ने पूछा कि मुनिराज यहाँ से कोई गाय गुजरी है क्या, तो मुनिराज ने कहा कि मैं जब से खड़ा हूँ तब से कोई गाय यहाँ से गुजरी नहीं। समझ में आई बात, जब से खड़ा हूँ तब से यहाँ से कोई गाय गुजरी नहीं है। तो इसका मतलब हित मित्र प्रिय है, जो सत्य की बात आती है ना, हित मित्र प्रिय की किसी को नुकसान भी नहीं हो, किसी को मतलब ऐसा सत्य भी नहीं किसी को नुकसान भी नहीं, इन सब का ख्याल बहुत रखा जाता है। सब क्या कौन सा अंग था, इसे उपगुहन अंग कहते हैं। उसके बाद छठा, क्राम क्रोध लोभ वगैरह कोई पण कारणे सम्यक अने चारित्र्यथी भ्रष्ट थती वक्ते पोताने अने बीजाने फरीथी तेमा स्थिर करवो ते स्थितिकरण अंग छे। कि कभी इतना गुस्सा आ गया कि बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और बिल्कुल कई बार ऐसा बोलते ना कि ये इतना हुआ, मतलब इतना धर्म करते और इतना गुस्सा करते हैं, तो ऐसा कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी गुस्से की परिस्थिति आ जाए, कैसी भी काम क्रोध लोभ लालच की स्थिति भी आए, कैसी भी स्थिति आए, अपने को अपनी श्रद्धा और दूसरे की श्रद्धा को कभी डिगने नहीं देना, उसका नाम है स्थितिकरण अंग। सातवां, पोताना सहधर्मी प्राणी ऊपर वाचरणा ऊपर हेत राखती गाय नी माफत निरपेक्ष प्रेम करवो ते वात्सल्य अंग से, अर्थात अपने साधर्मी के ऊपर सदा वात्सल्य का परिणाम रखना वो वात्सल्य अंग है। आठवा, अज्ञान अंधकार ने हटानी ने विद्यावर वगैरह थी शास्त्रों में कहे यथा योग्य रीति प्रमाणे पोताना सामर्थ्य प्रमाणे धर्म का प्रभाव प्रकट करवो ते प्रभाव कहलाये थे। कि किसी भी प्रकार से विद्यावर वगैरह आदि किसी भी प्रकार से जैसे भी जैन धर्म की श्रद्धा मतलब बढ़ती हो, जैन धर्म की प्रभावना होती हो, और उस प्रभावना में बहुत सारे कार्य आते हैं, चाहिए जैसे पाठशाला चलती है, पाठशाला चलना, मंदिर का बनना, धर्मशाला, मतलब कुछ भी कार्य हो, जितने भी तीर्थ यात्रा कैसे भी कार्य से धर्म की वृद्धि होती है, वो कार्य करना, जलूस आदि निकलना, ऐसा कैसे भी कार्य से जैन धर्म की प्रभावना होती है, उसका नाम प्रभावना अंग है। आगुणों अंगों की उल्टा शंका कांसा अभिचिकित्सा मूल दृष्टि अनुभवन अस्थितिकरण अवसल्य अप्रभावना असम्यक्ता आठ दोष है, तेने हमेशा दूर करवा जोइए। देखिए वास्तव में तो आगे जो उसके बाकी के जो दोष बचे हैं, 17 दोष बचे हैं, वो आगे की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने जो देखा कि वास्तव में सम्यक के जो 8 अंग हैं, कि अगर सम्यक हमें धारण करना है तो हमें सम्यक के साथ में इन 8 अंगों को भी धारण करना होगा। जब तक ये 8 अंग हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक हम वास्तव में सम्यक की धारण भी नहीं कर सकते। पुनः एक बार 8 अंगों का नाम, पहला निशंकित, दूसरा आकांक्षित, तीसरा निर्विचिकित्सा, चौथा अमूर्दृष्टि, पांचवा उपकुहन, छठा स्पष्टीकरण, सातवा वात्सल्य और आठवा प्रवाह। इस प्रकार ये सम्यक के 8 अंग है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। बाकी जो आगे के जो 17 दोष है, 8 अंग और 8 दोषों की चर्चा हमारी हो चुकी है। बाकी का जो आगे के दोष है वो आगे संक्षिप्त में जिनवाणी पूर्ति करेंगे। 25 में 8 दोष इंक्लूड हो गए, मतलब ये जो 8 दोष अभी नहीं, ये संकादिक दोष। लेकिन क्या था, जो 25 की काउंटिंग थी उसने ये लास्ट में लिए हैं, लेकिन ये श्लोक मतलब इनसे विपरीत है, मतलब इसके लिए कोई अलग से कहना नहीं पड़ेगा, इनसे जस्ट अपोजिट है। जैसे निशंकित से अपोजिट संकित, कांचित से कांचित, तो इसके लिए अलग से उनको नहीं बताया है, 8 अंगों में बता दिया है कि ये जो 8 अंग है इनसे उल्टे ही 8 दोष है। बराबर है। चलिए खड़े खड़े होंगे संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति।
वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लोक